तो श्री चैतन्य गोस्वामी के आविर्भाव के बारे में बड़े मतवाद है। कई कहते हैं कि ये दक्षिणात्य में, कहीं बोलते हैं उत्कल प्रदेश में, कहीं बोलते हैं बंगाल में। तो हम गौड़िया हैं तो गौड़िया अभिधान उक्त को ग्रहण करते हैं। उसमें बताया कि केंदुबिल्लिया ग्राम ओडिशा में भी है, बंगाल में भी है, साउथ में भी है, स्थान तो एक ही है केंदुबिल्लिया ग्राम। लेकिन गौड़िया अभिधान में बताया गया कि केंदुबिल्लिया ग्राम बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रकट स्थान है। पिता का नाम भोजदेव, माताजी का नाम बामा देवी थी। तो उन्होंने, क्योंकि बहुत महाप्रभु से भी पहले का बात है, इसे गौड़िया संविधान में लिखा गया कि एक अजय नद करके नद था, इस नद नदी अब जानते ना, नद से उन्होंने श्री राधा माधव को प्राप्त किए थे। राधा माधव विग्रह उनको मिला था और वहीं से उन्होंने राधा माधव को उपासना किया। भगवान जिसको बनाते हैं वो अपना ही बना करके लाते हैं, है ना। नहीं, ये नहीं है कि कोई पढ़ करके, सुन करके, समझ करके, प्रैक्टिस तपस्या करके भगवान अपने चुनते हैं अपने लोगों को, वो अपने बनाकर खुद लाते हैं। जयदेव गोस्वामी की लेकर आए और उन्होंने वहां से लक्ष्मण सेन राजा जब राजत्व करते थे बंगाल में, तो इस समय में आए थे। और इसे कहा गया कि लक्ष्मण सेन राज्य में जो बड़े बड़े कवि सम्राट सब थे पंडित उनके सभा में, वो जब ये दशावतार स्तोत्र सुने तो चकित हो गए। महाराज भी चकित हुए लक्ष्मण सेन, उनको सिविल ड्रेस में मिलने गए थे। तो उनको मिल करके, उनके जो व्यक्तित्व को देख करके राजा लक्ष्मण सेन बड़े प्रभावित हुए। तो उनको रिक्वेस्ट किए कि मेरे राज दरबार में आप भी महाकवि के रूप में रहिए, आइए, मैं आपको सारी व्यवस्था करूंगा, रॉयल फैसिलिटी सब दिया जाएगा, राज के भत्ता, राज के आवास, आप हमारा सभा को मंडित कीजिए। और देखिए जयदेव गोस्वामी, हम लोग को ये कि गवर्नमेंट सर्विस ही पाने के लिए छोटा मोटा चपरासी काम ही मिल जाए गवर्नमेंट सर्विस, अरे करोड़ों की संख्या में एप्लीकेशन और कितने क्या क्या ऊपर नीचे करते हैं। और उनको राजा स्वयं अपने घर में आकर के बुला रहा था कि मैं आप परिचय दिया कि मैं राजा हूं, मैं ही रखना चाहता हूं, और बहुत गौरव से बता रहा था। उसको सुन करके जयदेव गोस्वामी हाथ जोड़ दे, बोले आप मेरे पीछे पड़ेंगे तो मैं भाग जाऊंगा, यहां से नहीं रहूंगा, बंगाल छोड़ के चला जाऊंगा। बोले क्यों ना, मुझे ये सब जो रहन सहन विषय सुख मुझे पसंद नहीं है, आप लोग विषय है, मैं यहां विषय से नहीं रह सकता, मैं वैराग्य हूं, जो सचमुच स्वभावगत वैराग्य है विषय में टिक नहीं सकते ना। तो उनको दुख हुआ, बोले तुम क्या अगर राज सुख से मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं नहीं, वो उठाने अपना बेडिंग चलने लगे, और साधु लोग का कुछ ज्यादा होता ही नहीं। तो लक्ष्मण सेन राजा में हाथ जोड़े, बोले नहीं 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 नहीं, मैं ठीक है छोड़ देता हूँ, नहीं है आप, मैं कहाँ कहीं कुटिया बना देता हूँ, आप कुटिया में, हाँ कुटिया में रहने वाला हूँ, कोई जंगल फंगल नदी किनारे। बोले ठीक है। गंगा किनारे एक बहुत सुंदर वन था, उस द्वीप में साल भर सारे दीप निवास करते हैं, ऋतु दीप करके जागा है नवदीप मंडल में। वहां चंपा फूल के, चंपा फूल है ना, गोल्डन चंपा, उसका जंगल था, और चंपा फूल के जंगल के बीच में उनका कुटिया बना करके वहीं रहते थे। वहां चंपा फूल को बेचा जाता था मार्केट में, इसलिए चापा हटी इस स्थान का नाम है। तो वहां पे राधा माधव की सेवा करके वहीं रहते थे। तो यहीं पे इसे वर्णन है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के नवदीप महात्म्य वर्णन है कि श्रीमन महाप्रभु से सैकड़ों साल पहले की बात है, लेकिन महाप्रभु स्वयं राधा माधव के मृत तनु संपकवरण ऐसे गोल्डन अवतार के रूप में उनको दर्शन दिए थे। श्री जयदेव गोस्वामी को दर्शन दे करके बोले तुम यहाँ क्या कर दो, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं, जगन्नाथपुरी जाओ। यदि भी वो वहीं रहना चाहते थे, बोले नहीं जगन्नाथपुरी जाओ, और मैं, बोले मैं अभी नहीं, मैं जब प्रकट होऊंगा फिर मैं सन्यास लूंगा, सन्यास लेकर मैं भी पुरी में जाकर रहूंगा, और मैं आपके रचित गीत को सुनूंगा, तो इसलिए आप गो, अब पहले से जाओ। आप उनको भेज दिए, तो महाप्रभु के आदेश से उन्होंने फिर राधा माधव को लेकर के चले गए, नवदीप छोड़ करके जगन्नाथपुरी वास करने गए, तो वहां रहने लगे। तो ऐसे कहावत है परम वैरागी संत हैं, कुछ भी नहीं उनका, लोटा कमल उठा चल दिए, वहां जाकर के पेड़ के नीचे और सोते थे, भिक्षा करके पाते थे और भगवान को दर्शन करके, उनका कवि थे महाकवि, तो कविता रचना करना चाहते थे, गीत गोविंदम का वहीं रचना किए, जो अष्टपदी गीत गोविंदम बड़े प्रसिद्ध, जगन्नाथ जी के बहुत प्रिय है गीत गोविंदम, तो उसको रचना कर रहे थे। तो इसी समय में जगन्नाथ मंदिर में एक कई सेवक होते हैं 36 पाठक, एक पुजारी ब्राह्मण सेवक थे, तो यद्यपि शादीशुदा तो किए थे लेकिन उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अंततः बोला किसको पुकारो, मैं ठाकुर जी की सेवा हूँ, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किए, बोले हे जगन्नाथ मैं शादी को 2-3 साल हो गया, कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान दो, जो संतान होगा मैं आपकी सेवा में नुछावर कर दूंगा, आपके ही मान करके मैं अभी प्रमिश कर रहा हूं, तो आप संतान दीजिए आपके सेवा के लिए। तो थोड़ी दिन में उनकी पत्नी गर्भवती हुई, उनका संतान हुआ, लेकिन हुआ एक बेटी, बेटा नहीं हुआ। ब्राह्मण बोला हाय ये क्या कर दी, मैं सोचा था फुल टाइम ब्रह्मचारी बनाऊंगा लेकिन ये क्या होगा। तो जो भी हो अब बेटी हुआ, चलो ठाकुर जी के पास उनको लालन पालन की। अब जब उनको 15-16 साल के हो गए, विवाह के उपयोग हुए, बोला मैं गरीब ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा से चलता हूँ, अभी उनके बर ढूंढो, शादी करो, बड़े सब है ना, नहीं खर्चीला काम है, मैं कहाँ कर पाऊँ, मैं तो शुरू से संतान होने से पहले से ही कंडीशन किया था ठाकुर जी के साथ, जो होगा वो आपका ही है, अब उनके हवाला कर देता हूँ, इतने दिन में पाल पोषण लेकर के गया बेटी के, बोला चल मेरे साथ में। मंदिर में जाकर श्रृंगारी ब्राह्मण था, बोले ठाकुर जी ये आपका ही है, आप उनका मैं अभी तक पालन सुन कर दे, अभी उनका शादीशुदा आप संभालिए, किसको शादी करेगा, वर भी ढूंढिए, आपने पात्र ढूंढिए, और दहेज फहेज देकर जो भी करना है आपको करना है, कन्यादान कन्यादान आपको करना है, हमारा पहले से एग्रीमेंट था जन्म होने से पहले। भगवान हंसने लगे, बोले मुझे पता है, तो आके मुझे बोलेगा, हाँ मैं दिया था उनको, मैं कन्यादान करूंगा और क्या, मैं एडवांस बुकिंग करके रखा हूं उसके लिए। बोले क्या, अब वर देख ले, देखा वो बिल्कुल रेडी हो कि आज ही शादी करना है, आज ही लेकर जाऊं ना, कहां बताओ ना, एड्रेस बताता हूं नोट करो। जगन्नाथ ने उनका एड्रेस बताया, बोले चले जाओ सीधा वो पार करके देखना, पेड़ के नीचे एक लंगूटीधारी बैरागी संत बैठा है, वही हमारे बेटी के, वो बेटी का नाम था पद्मावती, पद्मावती के दामाद तो वही है, उसके लिए मैं बनाया उसको। बोले ये बैरागी, हाँ वो, बोले राजी नहीं होगा, बोले मेरा नाम बताना, हमारा प्रसाद है, शादी करना ही पड़ेगा। अब ब्राह्मण जब ठाकुर जी की आज्ञा है लेकर के पद्मावती के लेकर के गई, और देखे अपना बैठे थे अकेले भिखारी वेश में अपने, और जा करके बोले वो पुजारी जी आप कैसे, ना ये बेटी, हे क्या कर रहे हैं, हम ब्रह्मचारी हैं बैरागी हैं। बोले नहीं नहीं अब वो, बोले ना ना ना, बोले मैं जा रहा हूं छोड़ करके। बोले जगन्नाथ जी से मैं से, बोले नहीं जगन्नाथ जी का आदेश आपको भेजे हैं, अभी आप रखिए, मैं नहीं जानता हूं, उनके पास छोड़ करके ये चले गए, पुजारी चले गए, और वो बोलते जैसे चले गए, बुला अरे रुको रुको लेकर जाओ बेटी को, मैं नहीं लेने वाला हूं ठाकुर जी का आदेश में। तो बोले कि जयदेव गोस्वामी उठकर बोले देखिए आपका नाम के मतलब, आप जहां जाना चाहती है मैं आपको छोड़ देना चाहता हूं, हाँ कृपा करिए मेरे, देखो यहां तो कोई रहने के स्थान नहीं, पेड़ के नीचे हैं आप कहीं रहेंगे। सुपद्मावती ने जयदेव गोस्वामी के चरण में गिर करके प्रार्थना करने लगी, बोले मेरे पापा के सामने साथ में गई थी मंदिर, मेरे सामने ठाकुर जी ने आपके नाम बता करके आपके दासी के रूप में मुझे भेजे हैं, मैं खुद सुनी हूं, तो मुझे आपने कैसे आप निकाल सकते हैं, आप निकाल देंगे तो मैं आपके चरण की सुगंध से ही आत्महत्या कर डालूंगे। बोले लेकिन मैं कहां से मेंटेन कर पाऊंगी, मेरे कुछ है ही नहीं, हमारा रहने का ना खाने का ठिकाना नहीं कुछ। बोले जैसे आप जीवित रहते हैं मैं भी आपके साथ इसी प्रकार जीवित रहूंगी, और ये आप शायद मन में सोचते होंगे कि अब मैं गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लूंगा, और मैं तो खुद अपना मेंटेन नहीं कर पाता हूं, और उसको कैसे पालूंगा, इतने सारे डिमांड उसका होगा क्या होगा, ये आप भूल से मत सोचिए, आप ठाकुर जी के आदेश से मुझे स्वीकार करिए दासी के रूप में, और देखना आज से आपका जो भी चिंता सब दूर हो जाएगा। अगर मैं इस नहीं कर पाऊं तो मुझे आपने त्याग देना। तो उनकी इस दमदार बात के ऊपर जयदेव गोस्वामी बोली क्या बात कर रही है, दुनिया में ऐसा क्यों हुआ ही नहीं। तो फिर उन्होंने उनको स्वीकार किए, और उसी दिन से उनके चरण की शपथ लेकर के पद्मावती ने उनके स्वामी जयदेव की सेवा में ऐसे लग गई कि जो पेड़ के नीचे रहते थे उन्होंने स्वयं जा करके झाटी से पत्थर पत्थर सब ला करके और उनके लिए एक कुटिया बनाई पेड़ के नीचे, एक कुटीर स्वयं बनाई, जंगल से पत्थर पत्थर ला करके मिट्टी से झाड़ी से ला करके बनाई। जो भिक्षा करने के लिए जयदेव गोस्वामी जाते थे, बोले आपको जाना नहीं, आप यहीं बैठिए, आपको लिखा पढ़ा करना है कीजिए, कभी तो मैं जा रही हूं। वो जाकर के गांव गांव भिक्षा करके लाती थी। राधा माधव की सेवा का दायित्व तो स्वयं ले ली, तुलसी चंदन लाना, फूल लाना, उनको स्नान कराना, सेवा करना। जयदेव गोस्वामी सोने समय में उनके पद सेवा करेगी और सो जाएंगे तब सोएगी, और उठने से पहले उठ करके अपना क्रियाक्रम करके उनके स्नान टान के लिए सब व्यवस्था सब करके रखेगी। उठ के देखेंगे एवरीथिंग इज रेडी। उनका कोई वस्त्र आदि नहीं होता था, जो भी फूटा मोटा वस्त्र होता था उसको साफ करके सुखा करके उनके पहनने के लिए पहले से व्यवस्था करके रखती है। उनको कुछ भी नहीं टेंशन उठाना पड़ा, रेडीमेड सब प्रसाद मिल रहा है, भिक्षा घर के रहना व्यवस्था पानी सब ऐसे सेवा की। जयदेव गोस्वामी कहे सचमुच में इसी के चक्कर में फंसा था, मेरे रचना नहीं हो पा रहा था गीत गोविंद, ठाकुर जी ने व्यवस्था किए मैं उनके गीत रचना कर सकता हूं, अभी तो मुझे समय है सोच कर मेरे लिखा हूं। तभी पद्मावत के कारण ही जयदेव गोस्वामी सक्षम हुए इस गीत गोविंद को पूर्ण करने पा रहे में, नहीं तो उनको टाइम नहीं होता था। सब कुछ करें, भीख मांगे, खाना बनाए, सेवा की पूजा सेवा करें, घर साफ कर, कैसे करें हो नहीं पाता था। लेकिन पद्मावती इस प्रकार सेवा की कि वो कुछ नहीं करे, सब कुछ पद्मावती करने लगी। तो इस प्रकार से और उनको अपना साधन भजन तो करने, उनका साधन केवल यही था, अपने जीवन का एकमात्र तपस्या और एकमात्र व्रत अपने पति को प्रसन्न कर सेवा के द्वारा वही लगी। तो जयदेव गोस्वामी निराचल धाम में वहीं रह करके जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे प्रतिदिन, और वहीं पे गीत गोविंद रचना करते लगे। ऐसे कथन आता है कि उनका गीत गोविंद स्तोत्र को देख करके श्री जगन्नाथ मंदिर के जो राजा थे गजपति महाराज, उन्होंने बोले इतने सुंदर, तो उनको बुलाकर बोले मेरे नाम में लिख लो कि मैं रचना क्या करके, वो भी राजा भी कवि था। तो जयदेव गोस्वामी बोले आप रचना कहने नहीं, मैं भी रचना करता हूँ, मैं भी संस्कृत में लिखता हूँ, लेकिन इतने सुंदर मैं नहीं लिख पाया, तो मुझे लिख दीजिए मेरे नाम में, मैं भी इस लिख। जयदेव गोस्वामी मैं नहीं जानता हूँ आप कैसे करेंगे, आप ठाकुर जी के पूछिए। तो बोले नहीं मैं भी लिखा हूँ, मेरा भी श्रेष्ठ है। तो जगन्नाथ जी के पास रख दिया गया जो राजा के रचित और जयदेव गोस्वामी के रचित। सुबह जाकर देखे जगन्नाथ जी ने जो जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद को लेकर के छाती में पकड़ के रखे हैं और उनको पैर के नीचे फेंक दिए। राजा को बड़ा अपमान महसूस हुआ, जो पब्लिक में देखा गया, इतने महसूस हुआ कि राजा सुसाइड करने जा रहा था, मतलब डूब के मर जाऊंगा समुद्र में। मुझे जगन्नाथ जी के प्रधान सेवक मुझे इतना बड़ा अपमान, ये कहीं वैराग्य आ गया उनको। जगन्नाथ जी सुनते बोले रुको रुको, तू नहीं जानता उसके महत्व, नहीं जानता, साधु मेरे हृदय होता है, मैं ही साधु के हृदय में रहता हूं, अपना तू उनके शरण में जाओ, तेरा भी कल्याण होगा, मैं तेरा कुछ पद ला करके उसमें जोड़ दूंगा, तू मरो मत। पीछे तू मेरा भक्त है लेकिन इनका तरह नहीं है, उनके सेवा करो। तो राजा फिर बुला करके उन्होंने फिर जयदेव गोस्वामी को शरण गए और उनको राजभवन में ला कर रखने के लिए सारे व्यवस्था किए। जब राजभवन में रखने के लिए व्यवस्था कर, जयदेव गोस्वामी तो पहले से राजी नहीं हो रहे थे, बोले मेरे राजा के चक्कर में तो मैं ऐसे हुआ, तू बोले मैं ही कुटिया में रहूंगा। तो कुटिया में रहे, इस प्रकार घटना है कि बोलते हैं कि एक समय ऐसे हुआ कि वो जब लिख रहे थे तो एक उनको साक्षात दर्शन होता था वृंदावन के लीला का, पूरी में बैठ करके वृंदावन के राधा कृष्ण के निकुंज लीला को साक्षात, जैसे टीवी के सामने सीरियल चलता देख रहे हैं ऐसे दिखते थे और लिखते थे, ऐसे को मन में सोचकर नहीं, दिख करके लिखते थे। तो एक समय राधा रानी की मान लीला का दर्शन हुआ उनको, और श्री भगवान ने मानिनी राधिका को, खंडिता नायिका को मनाना इतना आसान बात नहीं है, वो मान करके बैठ गई और भगवान ने उनको मान करने के, मान भंजन करने के लिए, उनको मनाने के लिए हर कुछ कर, सब कुछ अपना लिए, लेकिन वो मान नहीं रही, बड़े रुट गई थी। तो भगवान ने अंततः समर्पण किए अपने आप को, फुल सरेंडर किए, पूर्ण समर्पण किए श्री राधिका के चरण में, बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं रात में बनचारी वृंदावन में घूमती हूँ और आप भी आए हैं, तो मेरे पास ये बांसुरी है, यही मेरा संपत्ति ले लो। उनके मयूर पूछ बांसुरी, वो राधा जी के चरण में दे दिए भेंट, बोले अब तो मान जाओ, फिर भी नहीं मानी। तो ऐसे दिखाई पड़ा जयदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि श्री भगवान ने उनको मनाने के लिए श्री राधिका को उनके चरण पकड़ करके प्रणाम कर लिए और बोले कि हे राधे, आपके श्री चरण को मेरा सर में धर दो, अब तो खुश हो जाओ, मान जाओ। जब ये प्रार्थना करने लगे, इसे राधा जी बैठिए ऊपर में चौका के ऊपर, पत्थर के ऊपर, और नीचे गिड़गिड़ा करके भगवान ने चरण को मांग रहे कि मेरे सर में रख दो तेरा पद पल्लव को। तो इस बात को जब जयदेव गोस्वामी ने देखे, बोले ये कैसे संभव हो सकता है, मैं कैसे इस पद को लिखूं, ऐसे कैसे मैं लिख सकता हूं, ये संभव है कि ये श्री राधिका के, राधिका उनके दासी है और उनके चरण को भगवान ने अपने सर पर रखना चाहते हैं। मैं आज लिख दूं, आगे चल करके इतिहास में लिखा रह जाएगा, लोग मुझे कंप्लेंट बोलेंगे, देखो जयदेव गोस्वामी क्या लिख दिया, भगवान के नाम नहीं इतने बड़े। तो ये मैं एक कलंकक बात नहीं लिखना चाहता हूं। तो लेकिन लीला में देखते हैं कि वही घटना हो रहा है, तो कंफ्यूज में पड़ गए, बोले क्या करो, बहुत बार बार देखते हैं कि यही हो रहा है और उनको कैसे मैं लिखूं, ये तो कतई नहीं, मेरे प्रभु माधव के ऐसा थोड़ी ना करते हैं, ठीक है, राधा रानी स्वीकार कैसे। वो बिल्कुल उसको अब कलम चला नहीं उनका लिखने के लिए, बैठे सोच सोच करके क्या करूं, उसको कैसे लिखूं, मेरा बदनाम होगा, ठाकुर जी के अच्छे, ठाकुर जी के लिए अच्छा नहीं है आगे चल करके उनका रिकॉर्ड। तो जयदेव गोस्वामी फिर बहुत समय बीते, बोले ठीक है बाद में सोचते हैं क्या करूंगा। तो पद्मावती बोले, पद्मावती अपना कहीं भिक्षा भिक्षा करके कुकिंग करने में लगी थी। अब दोपहर हो रहा था, उनको दोपहर तक लिख नहीं पा रहे थे, सुबह से बैठे थे। तो जयदेव गोस्वामी बोले कि पद्मा, कुकिंग हो रहा ना, बस थोड़े दिन प्रसाद रेडी होने वाला है ना, मैं जा रहा हूँ स्नान करके आ रहा हूँ, अब प्रसाद रेडी को स्नान करके नहीं हो रहा, थोड़ा व्यस्त होकर के उठ करके बोले तेल लाओ, गमछा लाओ, तेल गमछा ला करके दिए, तेल फिर लगा करके गमछा लेकर के जयदेव गोस्वामी स्नान करने निकल गए। जैसे जयदेव गोस्वामी स्नान करने निकल गए, पोथी पोथी बंद करके और लिखा नहीं पा, आज दिन में जो बचे थे यही लीला लिख नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ी देर में जयदेव गोस्वामी वापस आ गए, तो पद्मावती देखा, बोले क्या हो गया, आप आ गए ना, मुझे वो स्नान करने रास्ता में याद आ गया, मुझे सुबह से लगा था लिखने के लिए, मैं याद आ गया उसको लिखना चाहता हूँ, आप रेडी हो ना, बस भोग लगने वाला है ना, मैं प्रसाद तैयार करूँ, मैं प्रसाद पाऊंगा। तो जयदेव गोस्वामी जा करके अपना जो लेखनी रूम को गए, वहां बैठ कर पोथी खोल करके कुछ लिखे, लिख कर थोड़ी देर बाद आए, और उन्होंने कौन सा फिस्ट बनाई थी उनके हिसाब से, जो मांग करके थोड़ा राइस लाई थी, चावल बनाई थी, और उसके साथ में इमली के पत्ता की चटनी और थोड़ा साग, बस वही वही अपना राजभोग था। तो उसको एक केले के पत्ता ला करके उनको भोगा फरिंग करती और बोले ठीक है, जयदेव गोस्वामी बैठे, उनको प्रसाद पवाया, स्वयं परिवेषण करती थी, वो प्रसाद पाए, प्रसाद पा करके फिर बोले मैं जा रहा हूँ, अब स्नान नहीं किया, बाद में स्नान प्रसाद में। तो वो चले गए जयदेव गोस्वामी। तो पद्मावती ने प्रतिदिन की तरह वो चले जाने के बाद में फिर वो झुटन पत्तल में जो उनको उचिष्ट बच गया था वही पत्तल में उसको खाने लगी, वो खा रही थी। इतने में जयदेव गोस्वामी फिर आए, अब गीला गमछा पहने हैं, एक गमछा और गमछा निचोड़ के कंधे में डाले, आ करके घर के गेट में प्रवेश करते हुए देख रहे बल बल करके पद्मावती, पद्मावती देखा क्या हो गया, वो खा रही थी, बोले क्या मुझे इसे क्यों देख रहे, अरे इतने साल हो गया शादी के, अब तो देखे नहीं थे क्या, अभी इसे क्यों देख रहे। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं पद्मा, देखी देखा तो था मैं आपको, कई बार देखी हूं, देखा हूं, लेकिन जब से तुम मेरे पत्नी के रूप में मेरे पास आई है, मैं आपको ऐसा कभी नहीं देखा कि मैं खाने से पहले भी तुम खा लो, बैठ कर बढ़िया से खा रही हो, कभी ऐसा नहीं हुआ, जिस दिन से मेरा हाथ पकड़ी है तभी से मेरा औचिष्ट ही तो खाती है, मैं हमेशा देख रहा हूं, मैं खाने के बाद जो भी बचे का बचा कुछ उसी को खाती है, लेकिन आज मैं भी स्नान करके आ ही रहा हूं, गमछा गीला पहना हूं और आप देख रहा हूं मजे से खा रही है, ये क्या हो गया। तो पद्मावती बोलते ये क्या बात कर रहे हैं आपने, मैं कभी नहीं ऐसा करती हूं, आज भी नहीं किया हमने, मैं तो आपको उचिष्ट ही खा रही हूं, सदा खा कर आया, आज भी खा रही हूं, जयदेव गोस्वामी और कंफ्यूज हो गए, बोले पद्मा मैं देखा था कि आपके सेवा भाव कोई तुलना नहीं है, सेवा तो करती थी लेकिन मैं कभी नहीं महसूस किया कि आप झूठ भी बोलती है, सत्यवादी थी लेकिन आज मेरे सामने सरासर झूठ भी बोल रही है। पद्मावती बोला आप ये क्यों पागलपन आप कर रहे हैं, मैं आपके पहले से खा रही हूं आप झूठ बोल रही हूं, ये सब बातें आप क्यों कर रही हैं ना, और क्या मैं अभी खाया ही नहीं, स्नान करके आ रहा हूं और आप खा रही है मेरे सामने, बोलते कि मैं अवशिष्ट खा रही हूं और बोलते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये क्या। तब पद्मावती ने बोली तो आप क्या बात कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोले कि मैं आकर अवश्य आप आए और खाए, कैसे ना आप स्नान नहीं किए थे, बगैर स्नान किए आप आकर के खाए और स्नान करने गए खाने के बाद, नहीं सा मैं आया था स्नान के बगैर ना केवल खाने के लिए आ गया था ना, और क्या ना, नहीं नहीं मैं तो पूछा कि ऐसे किसे आ गया ना, नहीं मेरा वो पद याद आ गया, मैं लिखने के लिए आया हूँ, अब लिखे फिर लिखने के बाद बोले भूख लग रहा है खा लूं, मैं बोला हाँ भूख लग गया, प्रसाद पा के गए, आप जाने के बाद भी तो मैं पा रही हूँ प्रसाद। जयदेव गोस्वामी और कन्फ्यूज, तीसरा बात और कन्फ्यूज, मैं आकर भी लिखा भी तो बोले अच्छा ठीक है ठीक, तू खा लो मैं जाकर देखता हूँ कौन आकर के मेरे लिखा, डुप्लीकेट जयदेव गोस्वामी को और आ गया क्या, अरे मैं तो अभी स्नान कर गया। अब जाकर के उनके जहाँ पोथी के पास जहाँ रखे थे घर में जाकर देखें तो पोथी बिल्कुल खुला पड़ा था, बंद नहीं किए थे, जो डुप्लीकेट जयदेव गोस्वामी आए थे वो खोल करके लिखे तो सही लेकिन बंद नहीं किए, जल्दी से चले गए शायद पकड़ा ना जाए। तो जाकर देखे पोथी खुला हुआ है, जिस भोजपत्र के ऊपर उन्होंने लेखनी से लिख, तब जो पेन पेपर था नहीं, ये लोहे के कांटे से लिखा जाता था पत्ते के ऊपर, तो लिख रखते थे उन्होंने कभी है कई बार लिखते हैं, तो उनके हस्ताक्षर नहीं था, उनके हाथ की लिपि लिखा और अक्षर नहीं था, वो कुछ इतने अनन्य सुंदर अक्षर लिखा हुआ था जिसको देख करके बैठ गए, उसको देख कर उठा कर सर में लगाया छाती में लगाया चुम्बन करने लगे, बोले हाय है ये किसकी लिखा है। अब जब देखे जो दो लाइन लिखा गया था बस, स्मर गरल खंड नंग मम सिरसी मंड नंग दही पद पलम उदारम, ओ दो लाइन गीत गोविंद में, श्री गीत गोविंद में अष्टपदी में ये दो लाइन जयदेव गोस्वामी के रचित नहीं, लिखित भी नहीं है, उनके हाथ के द्वारा लिखा भी नहीं, साक्षात भगवान गोविंद के द्वारा उनके हस्त कमल से लिखित दो पद है, आज भी प्रमाण है गोविंद हस्त लिखित दो पद जो है जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद में, उसको देख करके तो उनका होश उड़ गया, बोले साक्षात भगवान माधव आ करके मेरे रूप में, मैं तेल लगा करके स्नान करने गया था काम चलो वही रूप लेकर के आ गए, इसी रूप ला करके वो लिख कर चले गए जिसको मैं सुबह से लिखूं ना लिखूं इसे असमंजस में पड़ा था, उसी दो लाइन को स्वयं लिख करके चले गए, ये उनके हस्ताक्षर ही लिखा हुआ है, और इतने उठे और इतने रोए, अष्ट सात्विक विकार होने लगा, वो अपने बैठ के खाती थी, वो क्या कर रहे हैं पति अपना कर रहे हैं, खा पी करके और पत्तल को लेकर के बिल्कुल चाट चूट कर खा ली, बड़ा सुंदर प्रसाद था, खा करके अब पत्तल फेंक करके आई और गोबर में लिप दी, तभी तक पतिदेव बाहर आ रहे हैं, तब तो भाव गदगद होकर पतिदेव आ रहे, अब तो गमछा भी नहीं बदले हैं, गीला गमछा में गदगद होकर आ रहे हैं, बोले तो हो क्या गया आपका कपड़ा नहीं बन रहे आज। अब बोले पद्मा कह करके उनके चरण में गिर गए, बोले यह क्या कर रहे हैं मेरे चरण पकड़ रहे हैं, बोले मेरा पास और कोई उपाय नहीं, तेरे चरण पकड़ूंगी नहीं तो क्या करूं, क्यों, बोले जीवन भर मैंने त्याग तपस्या साधन भजन किया लेकिन मेरा तो टिकट कन्फर्म नहीं हुआ रह गया, बाकी तूने एक बार माला जपा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, ना मंगल आरती किया ना कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया लेकिन तेरा तो बड़ा पार, व्हाट आर यू टॉकिंग, अब क्या बात कर रहे हैं। बोले तुझे पता नहीं साक्षात गोविंद से माधव जो है हमारे पूजित पूजा करते हैं इसको, वो स्वयं आए मेरे रूप धारण करके, ये मैं नहीं आया था, वही आए, मैं तो अभी पता चला मुझे, वही आकर के लिख गए सुबह से मैं जिसको फंसा हुआ था, स्वयं चलो देखो ये उनके हाथ लिखा, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ी है, ये उनके हैंडराइटिंग है, वो स्वयं लिख करके गए और वो तो लिख गए चलो मेरे लिए, मैं तो देखने पे, तूने उनको दर्शन किया, दर्शन नहीं किया स्वप्न, उनको खिलाया बैठा करके परिवेषण कर खिलाया, दरस परस किया, खिलाया नहीं, और बाद में उनके झुटन खुद खा गई सारे, मुझे तो एक दाना भी नहीं दिया, क्योंकि आपके खाने के बाद में खा नहीं सकती मैंने, आपके सब कुछ आप ही कर लिया, मैं तो ऐसे के ऐसे रह गई। आप इस प्रकार कह करके, ये देखिए, इसी को कहते हैं शास्त्र में कहा गया, कोई कुछ भी ना करे, केवल भगवान की अपने निज जन भक्तों की सेवा में कोई लग जाए तो उनका जीवन अवश्य ही सार्थक होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा कर करके आपके चुटी निकल जाए, लेकिन ये संशय सिद्धि होगा वो कोई गारंटी नहीं है, उसमें हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन भक्तों की सेवा करो तो बिल्कुल 100% गारंटेड है आपका कल्याण होगा। तो इस प्रकार से पद्मावती जयदेव जो रहते थे, तो ये घटना से पूरे प्रसिद्ध में राजा प्रजा चकित हो गए, रे तू साक्षात भगवान के अंतरंग भक्त है। तो इस प्रकार से और उनका प्रसिद्धि बढ़ने लगा। ऐसे कथा आता है कि एक बार उन्होंने फिर लोग दान दक्षिणा देने लगे, एक बार राधा माधव के कुछ उत्सव करने के लिए, विशेष उत्सव के लिए कुछ अर्थ प्राप्ति करने के लिए, राजा से अर्थ नहीं लूंगा, मैंने खुद अपने हिसाब कलेक्शन को फंड रेज करके लाऊंगा। तो श्री जयदेव गोस्वामी जा रहे थे, दूसरे देश में गए थे, दूसरे कोई गांव में, तो जाकर कुछ धन लेकर के आ रहे थे राधा माधव की सेवा के लिए, उत्सव की सेवा के लिए, और रास्ता में जंगल था, और जंगल होकर जब आ रहे थे कुछ डाकू उनको पकड़े, चार दस्यु थे, पकड़ करके उनके सारे संपत्ति जो राधा माधव को छुप ले रहे थे उसे छीन लिए और उनको मार देने के लिए बोले गांव से जाकर राजा को बता, राजा के साथ उनका बहुत अच्छा घनिष्ठ था, सबको पता है, बोला तेरा राजा के साथ, तू राइट हैंड, राजा आपका बात मानता है, तू राजा को बोल देगा राजा हमको मार डालेगा तो तुझे हम पहले से मार देते हैं, तू मारने चाहते। वो जयदेव गोस्वामी प्रार्थना के, भैया वो पहचानते थे उनको, बोले तुम्हारे हमारे गाँव के लोग है, बोला हम तो तेरा पीछे किए थे, तू लेकर संपत्ति, बोला जो संपत्ति ले लिए फिर मुझे क्यों मार देना चाहते हो, नहीं तू राजा को बोल देगा। तो किसी एक दस्यु का मन में विचार आया, बोले नहीं अरे छोड़ दो बाबा जी, ऐसा करते ना अरे कंप्लेन कर देगा, ना ऐसा करते हाथ पर काट करके सूखा कुआ में डाल देते हैं तो जाएगा ना यही मेडिकल, तो हम क्यों दोष लेंगे संत हत्या का। हाँ हाँ, तो तुरंत उन्होंने अपने अस्त्र से उनके दो हाथ दो पैर काट दिए, बिल्कुल काट करके कुएं में फेंक दिए, उसको सूखा कुआं था उसको फेंक दिए और संपत्ति लेके जो लेकर आया था धन लेकर चले गए। और श्री जयदेव गोस्वामी भगवान के देखो इतने बड़े भक्त, हरि इच्छा से इस अवस्था से पढ़ करके हरि स्मरण करने लगे, उनके प्रति कोई उनका द्वेष नहीं हुआ, कोई उनके ये भाव नहीं, ईर्षा भाव नहीं हुआ, वही पढ़ करके हरि स्मरण कर लगा, जैसे इच्छा आपके मुझे फिर बचा दिया, अरे बचाया हैंडलेस लेगलेस करके, अरे कोई होता कुछ तो दे देता, एक आध दे देता, आधा सेट लेता, आधा सेट दे देता, काम चल जाता, कैसे लकड़ी फकड़ी लगा करके, ये क्या के दोनों हाथ दोनों पैर ले लिया, कुएं में डाल दिया, कोई मेरे सुनेंगे भी नहीं, कोई कौन पान, केवल हरि नाम की जीवा पर उच्चारण करके वही उनका क्षुधा, वही उनका खाने का वस्तु, पीने का, रहने का सब कुछ वही केवल हरि नाम को धारण करके कुएं में पड़ पड़ करके हरिस्मरण कर रहे थे। ऐसा भगवान की व्यवस्था है, पता नहीं भगवान कैसे भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट डे दोपहर में उस देश के जो राजा था गजपति महाराज, वो गए थे मृगया में, वो आ रहे थे, उनको जंगल के अंदर इस कुआं के अंदर से सुनाई पड़ा हरिनाम, बोले कौन हरिनाम कर रहा है, आकर देखे बोले कोई पड़ा है, बिल्कुल रक्त किच हुआ है, सब ब्लड ब्लड बड़ हुआ सब। तो उनके लोगों को बोले देखो, तो लोग जाकर उठाए, बोले देखे तो जयदेव जी, बोले ये क्या हो गया आपका, ना ये भगवान की इच्छा, भगवान ने इसे दंड दिए, बोले कैसे क्या बताओ तो सही, ना क्या बताऊं, मेरे पूर्व जन्म का कोई विशेष पाप था कि महापापी हूं, इसलिए पाप भगवान ने इसे हाथ पर काट दिए, हाथ पर निकाल दिए, बोले ऐसे पढ़ा कितने, बोले बोलो मैं आपका हूं, मैं जरूर बदला लूंगा, लेकिन बोले ना, अच्छी तरह से पहचानते थे उनको, कौन था वही गांव के लोग, लेकिन बोले नहीं, उनका नाम नहीं बताया, परिचय नहीं दिए, बोले नहीं, नहीं बोले मेरे कर्म के फल में भोग रहा हूं, हरि की इच्छा में दंड दिया, चलो हाथ पर काट दिया, आप हरिनाम तो करने के लिए इतना शक्ति तो है, मैं हरिनाम तो कर पाता हूं सुख से, इसी में प्रसन्न होकर इसे बोले। राजा बोला आगे तंग हो गया, बोले ये ऐसा व्यक्ति है, उनका हाथ पर काट कर फेंक दिया गया, और कल रात की घटना अब बताता नहीं, कितने महान होंगे। राजा उनको उठा करके लेकर गया, लोगों को लेकर चलो, वह राजभवन में उनको ध्यान में लेकर रखा व्यवस्था करके, और बिल्कुल विशेष प्रकार के उनके डॉक्टर लगा करके उनको सुखाव सुखा दिया, और उनको सेवा करने हाथ पर नहीं बैठकर उनके खाना पीना टॉयलेट बाथरूम कई सेवक सेवक लगा दिया, राज सेवा में रहने लगे। अब तो घर में अकेले रहते थे, अटल बाथरूम था नहीं जिसे जाते थे, अब तो राज सेवा में बिल्कुल व्यवस्था होने लगा, कई लोग लग गए, राजा ने राजा रानी दोनों ही सेवा में आते थे, उनके उनके गुरु बना दिए, उनको राजगुरु की तरफ वहां रहने लगे, सेवा होने लगे। तो एक दिन राजा ने आकर बोला कि आप इतने महान हैं, तो मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, इस सेवा से प्रसन्न है, और कौन करना चाहते हैं, और क्या करूं आपके लिए, राजपाट सब आपका ही है। तो जयदेव जी बोले कि देखिए, जीवन में सबसे श्रेष्ठ एक ही सेवा है, क्या ना, भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है। आप तो भगवान की सेवा करता हूं, मैं तो भगवान की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन भक्त सेवा मेरे मन लगता है, ना बताए कैसे करूं, ना कि बहुत दिन हो गया आपका यहाँ भंडारा वगैरह नहीं हुआ, कि बहुत बड़ा भंडारा आयोजन करो, दान दक्षिणा सारे ब्राह्मण को वैष्णव को बुलाओ, तो उनके लिए भोज और दक्षिणा की व्यवस्था करो, माघ मास में बहुत होता है। तो राजा बोला बिल्कुल करता हूँ, और जैसे जैसे उन्होंने बताए इस प्रकार से जगह से आयोजन करके पूरे उनके देश से जितने ब्राह्मण वैष्णव भक्त सबको बुलाया, और बोला राज के हिसाब से, राजा के हिसाब से भंडारा होगा, चकाचक भोजन और दक्षिणा भी, एनवलप भी बड़ा मोटा होगा। तो इस हिसाब से बहुत लोग आए, वो जो चार दस्यु थे जो उनको हाथ पर काट कर लेते, वो भी डुप्लीकेट ड्रेस पहन करके मेकअप करके वैष्णव हरि बोला हमको मिल जाएगा, जेने फिन डाल के लोही बाजार से खरीद ले आए सामान, ला करके वैष्णव वेश पहन करके उगे, ड्रेस पहन करके आप साफन कपड़ा पहन ले, चोटी लगे सेविंग करके नींद डाल करके चले, मिड बैग में हाथ डालकर हरे कृष्ण चले, पहुंच गए दक्षिणा मोटा मिला, पहुंच गए भीड़ के अंदर, वो भी थे लेकिन जा रहे थे उसी लाइन में, नियम वही था जो भी जाएंगे जो महंत है वही तो राजा के गुरु थे, उनको प्रणाम करके फिर जाते थे, और जाकर फिर भंडार फंडार के दक्षिणा फकना लेकर के प्रसाद होता, फिर वहीं से फिर आते, रास्ता वही था जाने आने का, रास्ता में बैठे थे वो देखते थे, बोले मैं तो बाकी तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, कहूँ वैष्णव दर्शन करूंगा, हाथ तो नहीं कि पैर छू लूं कि सेवा करूं, पैर भी नहीं चल कर जा सकता, तो बोले मुझे रास्ता जहां लोग आना जा करते हैं उस रास्ता के किनारे मुझे बैठा दो, मैं दर्शन करूंगा, मन में प्रणाम करूंगा, मुंह से केवल बोलते रहूंगा। तो राजा ने इसे व्यवस्था किया था, वही आना जाने के रास्ते में उनको बैठा दिया था। तो सब जा रहे थे, जाकर के बोले इन्होंने कराया व्यवस्था, इन्होंने कराया, सब उनको महाराज जी प्रणाम आपके इसे करके जाते थे। अब लाइन में जाते जाते वो चारों आ रहे थे, वो देख लिया, अरे वो कैसे नहीं पहचानेंगे, थोड़ी दिन पहले तो उनके हाथ पर काटे थे, देख करके उनका ब्लड प्रेशर हाई, बोले अरे यही है, अरे यार राजा तो उनके नौकर की तरह बन गया है, अगर वो बता दे तब तो ही भंडारा में ही हमारा गला काटेगा, हाँ इतने बड़ा बाप रे बाप, वो क्या खाने के लिए आए थे, उनका पैर के नीचे जमीन खिसकने लगा, बोले क्या खाए, क्यों आए, सर्व लोभ के मारे ये बेकार गया यार, अभी जान जाएगा, बिल्कुल थर 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 कांपने, लेकिन आ चुके हैं अभी तो गेट पार करके, वो जा भी नहीं सकते, वो देख लिया, उनको देखा जयदेव गोस्वामी, देख करके इसी गौर से देखे, और जब वो गौर से देखे बोले गया वो तो निश्चित ही सारा कर डालेगा, मरेंगे आज तो पता नहीं कब मारेगा, अब बिल्कुल उनका शुगर बीपी हाई, बिल्कुल टप में गया, नापने के लिए डॉक्टर नहीं था, लेकिन अब जाकर के बैठे भंडारा में, वो भंडारा में क्या खाएं, हाथ ना चले, मन ना चले, मुख ना चले, जब वो इतने जान गया और देखा है गौर से, वो तो अब वो ऐसे खा पी नहीं रहना, क्या राजा ने भी परिवेषण में जाता था आपको, तो जाकर के हम क्या करूं, तुम्हारे जो गुरु जी है ना, तो राजा ने बोला कुछ गुरु जी के साथ रिलेशन, तो जाकर गुरु जी को पूछा, बोला गुरु जी ये जो चार वैष्णव है आए हैं अच्छे तो दिखते हैं लेकिन वो खा पी नहीं रहे, बड़ा आपको चिंता दुखी हो रहे, ऐसा करो उनको आप स्पेशली जो आकर खूब मना करके खिलाओ बढ़िया सा, और कुछ पार्श्व पस्त्र उनको टिफिन भर करके दो, उनको चार बक्स घर में जा खाएं और फैमिली के लिए भी ले जाएं, और उनको दक्षिणा विशेष दो, दूसरे को जितना देता है उनसे 10 गुना ज्यादा उन चारों को दो, बहुत सारा धन संपत्ति दो उनको, ताकि बोले क्यों ना, बस अच्छे भक्त ना दुखी हो रहे ना, सुखी करना काम उनका है तो उनको दो। तो राजा ने बोला जैसे गुरु जी के आदेश है, जाकर बैठ कर उनको खिलाया, बोले गुरु जी की आज्ञा। तो मन में सोचो गुरु जी की आज्ञा खिला रहा है, वो डाउट के बोले भजन तो नहीं है उसमें, दूसरे तो वही खा रहे हैं, हमको वही दे रहा है, वही गुलाब जामुन वही बकेट से परवेषण कर रहे हैं। तो बोले नहीं खाने, तो खा गए, खाए पिए बढ़िया से पेट भर के, उनको और भी दिया सामान लोड करके। फिर बोला गुरु जी ने बोले आपको हमने 10 गुना ज्यादा दक्षिणा देना है। अरे इतना ज्यादा ना, इतना ज्यादा हम ले नहीं सकते ना। गुरु जी ने बोले मैं आदमी दे करके बैलगाड़ी में भेज कर भेजूंगा, हम हमारा राज कर्मचारी जाएंगे आपका होम डिलीवरी देकर आएंगे घर में, घर में सारे सामान दे करके आएंगे। तो राजा ने व्यवस्था किया, 5-7 लोग सारे इतने एक बैलगाड़ी में उनके सामग्री जो दहेज की तरह, इतने सारे उनके गिफ्ट आइटम, इतने सोना रुपया और वस्त्र अलंकार पूरा बैलगाड़ी लोड करके राज कर्मचारी 7-8 लाठी लेकर के चौकीदार गए उनको छोड़ने के लिए। और जाते समय में आए फिर प्रणाम करने के लिए, वो प्रसन्न हुए देख करके, जयदेव गोस्वामी उनको देख करके। लेकिन वो जब प्रसन्न हो रहे देख कर खुश हो रहे थे, वो उनका तो हाल निकल रहा था, बोला पता नहीं ऐसे कर रहा है, इसका रहस्य क्या है, ऐसे क्यों कर रहा है, अब बाद में मरवाएगा क्या, अभी नहीं सबका सामने बोल रहा है कि क्या करे, उनको तो पाप छू रहा है ना मन। तो लेकर जा रहे हैं, तो जो राज कर्मचारी लेकर जा रहे थे, राजा भी पूछा, बोला नहीं मैं खुश हूं। तो राज कर्मचारी के मन में डाउट हुआ, ये उनको इतना एक्स्ट्रा दिया, हमको भेज रहा है उनके घर में अनलोड करके आने के लिए, इतना उनके लिए विशेष क्यों, बहुत और पंडित ब्राह्मण वैष्णव थे उनको नहीं दिया। तो जैसे राज गेट से निकल कर रास्ता में जा रहे थे रोड के ऊपर से, उनसे कई एक राज कर्मचारी पूछा चौकीदार ने कि भैया एक बात पूछो ना, क्या ये जो राजा के गुरु जी जो है राजगुरु, आपके लिए क्या ऐसे आपका साथ क्या नाता है, आपको राजा को भेजे स्पेशल हमको भोजन कराए, भोजन सामग्री आपके घर के लिए परिवार के लिए भेजे, और इतने सारे आइटम बैलगाड़ी लोड कर दे रहे हैं, फिर हमको भेज रहे हैं आपके घर में छोड़ के आने के लिए, क्या बात है भाई, ऐसे क्या है। तो एक चोर उसे बोलता है कि अब क्या बताऊं, तो पूछ लेते, सच बताता हूं, ये महाढोंगी ना, क्या ना, पहले वो जहां नौकरी कर रहा था हम ही नौकरी कर रहे थे, वो चपरासी था हम जमादार थे, और राजा का घर में दोनों नौकरी कर रहे थे, और वो कुछ बदमाशी किया, बदमाशी के कारण राजा ने उसको मृत्युदंड दिया, बोला मार डालो, लेकर हमको भेजे मार डालने के लिए, हम उसको ले जाने के लिए मरवाने के लिए हमारा हाथ पर जुड़ा, बोला देखो मारो मत, तो फिर हम मारे नहीं, उसका हाथ पर काट कर फेंक दिए थे, और अब आकर यहीं बैठा है ठुंटा बाबा, ठुंटा बैठ कर ऐसे कर रहा है, और हम शायद कह देंगे राजा को ये बात को, पोल खोल जाए, इसलिए हमको ब्राइब दे रहा है, माल अच्छा खिला रहा है, अच्छा सब दे रहा है कि हम ना बोले इसी वजह से। तो चौकीदार लोग जो जा रहे थे उनको विश्वास नहीं, बोला ऐसा हमको नहीं लग रहा है ऐसा होगा। जैसे चौकीदार विश्वास करके वो कह रहा था, तुरंत तो जहां पे बातचीत करे तो धरती फट गया, धरती फट गया, वो चारों दसवीं धरती के अंदर गए, धरती उनको समा दिया, वहीं पर जीवंत समाधि हो गया चारों को चार। और ये सारे चौकीदार देखकर अति आश्चर्य, ये क्या हो गया, चारों ही धरती में गिर गए, धरती समा गया, उनको जीवंत मर गए, उसके समाधि हो गया। चिल्लाते चिल्लाते तो वापस आए, माल तो डिलीवरी हुआ नहीं, घर का अंदर पता नहीं था, आके राजा को बताया इसे अति आश्चर्य घटना हुआ, इसे से हुआ। तो राजा ने बोला समझ लेकर आओ, आकर फिर गुरु जी के पास बोला गुरु जी क्या घटना आप बताए, कि कुछ तो आप छिपा कर रखते हैं, क्या बात, सच बताओ सच बताओ। तो फिर बोले उनका मर गए ना, हाँ, अरे मैं क्या करूं, बोले घटना क्या है ना, लोकाल तो है एक्चुअली, वही चारों मेरा हाथ पैर काट दिए थे, मैं कुछ हमारा उत्सव के लिए समन मांग करके लेकर आया था, मेरे से छीन लिए, मैं हाथ पर जोड़ा तो हाथ पर काट दिए, मुझे फेंक दिए थे वही चारों, और मैं तो उनका नाम नहीं क्या था, मन मन तो कुछ नहीं था, मैं तो चाहता था कि उनको धन के वजह से ये पाप कर रहे हैं, संत वैष्णव को दंड दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनको अगर यथेष्ट परिमाण में धन दिया जाए तो उनका मन सुधर जाएगा, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको ज्यादा दे रहा था, अब मैं तो कुछ बताया नहीं। लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे ईर्ष्या के कारण ऐसे फिर भी झूठ बोल रहे थे, इसलिए धरती देवी झूठ को सहन नहीं कर पाया, उनके दंड विधान उन्होंने किया। जैसे बात जयदेव गोस्वामी राजा को कह रहे थे, सभी के सामने चौकीदार से खड़े थे, जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ दोनों पैर फिर निकल आया, फिर हस्तपद हाथ पैर दोनों फिर आ गया उनका, अब तो समाज पूरा राज्य में प्रसिद्ध हो गया, अरे कई दिन से हाथ पर था नहीं, हाथ पर दोनों हो गया उनका, दोनों आ गया उनको। तो जो हम सुनते हैं भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं साधुओं का लक्षण तितिक्षिव कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात सत्रव शांत साधव साधुभूषण। तितिक्षा मतलब सहनशीलता, भगवान के भक्त होने का जो योग्यता जो पात्रता है, जिस पात्र में भक्ति ठहरता है भक्ति रहता है वो पात्रता पहले होना चाहिए, तभी तो भक्ति अपन हृदय में टिकेगा। हमारे हृदय में अगर चार गुण ना हो तो भक्ति टिकेगा कैसे? वो चार गुण क्या है, वो पात्रता क्या है, क्या किस पात्र में भक्ति टिकती है? ओ हे सबसे पहले सहनशीलता, तितिक्षा, सहिष्णुता और यस कारुण्यता कृपा अमानिता मानदता। ये जो ये पात्रता हो तब तो भक्ति टिके। और साक्षात चार गुण से गुणी श्री जयदेव गोस्वामी थे, तितिक्षा करुणा सुहृदम सर्वदेही नाम जात शत्रु, किसी को शत्रु कभी मन में सोचे भी नहीं है। ऐसे क्यों? भगवान खुद बोलते हैं मेरे साधुओं का भूषण यही है, वही साधुता है, यही साधुओं का गुण है। वो सारे साधुओं का गुण मौजूद था उस जयदेव के गोस्वामी के अंदर। तो इसीलिए भगवान जो कहते हैं दावा करके दुर्वासा जी के सामने, साधुनाम हृदयम मई हम साधु मेरे हृदय में बैठे हैं, मैं भी उनके हृदय में बैठा हूं, मेरे अलावा और कुछ को जानते नहीं, मैं भी उनके अलावा कुछ को जानते नहीं। तुम क्या हंसो, तपस्वी अपस्वी बहुत ठीक ठाक है, लेकिन वो मेरा रिश्ता नाता साधुओं के साथ ऐसा है। यही से भगवान के साधु प्रिय है साधु, यही से साधु थे श्री जयदेव गोस्वामी। और समय तो हो चुका है, उनके ऊपर और भी बहुत 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 अद्भुत अद्भुत किंवदंती लीलाएं हैं। गीत गोविंद के बारे में बहुत विशेष जगन्नाथ जी के साथ लीलाएं हैं, समय नहीं फिर कभी चर्चा करेंगे। श्री जयदेव गोस्वामी की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर हरि प्रेमानंद।